ॐ शांति। सभी को यहां अभी आके मैं समझता हूं 24 घंटे से ऊपर हो गया, 36 घंटा हो गया शायद। हमेशा आते हैं तो क्या ऊपर आते हैं, चार धाम यात्रा करते हैं, खा के चले जाते हैं, बस ना इतना ही होता ना। कौन है जो पहली बार यहां एक रात रुकने का हुआ है, हाथ खड़ा करो। फर्स्ट टाइम ज्यादा अति बहुत सारे लोग हैं, ठीक। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम इस स्थान को मधुबन से ज्यादा मैं कहता हूं कि ये स्मृति वन है, क्योंकि ये एकमात्र स्थान है कि जहां पे साकार बाबा की हर प्रकार की जो क्रिया है, जिसको हम कहते हैं, देखिए भक्ति मार्ग में भी मथुरा भी है तो वृंदावन भी है, परंतु जन्म स्थान जो है और उसके पश्चात भी जो लीला का स्थान, तो अब जन्म स्थान पे तो हम जा नहीं सकते हैं, इच्छा बहुत होती है हम भी जाएं, पर अभी कराची सिंध हैदराबाद वहां तो अभी जा नहीं सकते कि जहां पे संस्था की स्थापना हुई, जहां पे जो बीज पड़ा, परंतु 42 के बाद जब यहां आए तो ये जो है लीला का स्थान है, अर्थात अनेक सारी स्मृतियां और भारतवर्ष के जितने भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई व बहनें, उन सभी का जन्म इस स्थान से हुआ है। क्योंकि यदि आज हम देखें तो हमारी लास्ट दादी रतन मोहिनी जी, ओम मंडली में से बहुत गिने चुने लोग बचे, जिसमें से विशेष हमारी दादी रतन मोहिनी, उसके पश्चात जो भी आज हम देख रहे हैं, जितना भी बड़ी दीदी या वरिष्ठ, वो सबका जन्म इस स्थान पे हुआ है। तो इसीलिए भी हम कहते हैं कि स्मृति वन इसीलिए, क्योंकि वो लोग सब पहले यहां आए, यहां से जन्मे, यहां से गए और उसके पश्चात उन्होंने अपना अपना स्थान को या अपनी अपनी, मैं कहूंगा अभी, राजधानी स्थापन की हर एक ने, अपना अपना जोन इत्यादि इत्यादि। तो इसीलिए भी इस स्थान का महत्व बहुत है कि जहां से आज संस्था के इतने सारे ब्रांचेस खुले, तो इस जगह से वो एक एक अणु निकला है। आज हम परिचय देते हैं तो सभी को कहते हैं कि भाई ये ब्रह्मा कुमारी संस्था विश्व की 142 देशों में व्याप्त संस्था है, इसका 6,500 से भी ज्यादा शाखाएं हैं। आपको पता है आज कितने लाखों की संख्या में हमारे भाई बहन हैं, परंतु ये सब घूम फिर के जब आते हैं तो उसका जो बीज है वो ये स्थान है। तो इसीलिए लोग आज भी जो बिहार में सारनाथ करके जगह है वहां पे क्यों जाते हैं दर्शन करने, भाई बुद्ध ने यहां तपस्या की है, वो पेड़ का दर्शन के लिए, बनियान ट्री बाबा बोलते हैं ना। तो ऐसे जैसे दीदी मां ने सुनाया, कण कण में यहां बाप दादा है। तो इसी वजह से यहां जब आप आते हो तो यहां का हवा अलग है, यहां के लोग अलग हैं। आप यदि देखो, इस पर्टिकुलर इसी जगह की मैं बात कर रहा हूं, यहां के जितने भी भाई व बहनें दिखेंगे, हर एक के ऊपर ये मधुबन नाम का कलेवर चढ़ा हुआ है, इनकी शक्ल पे ये एक जैसे लगेंगे आपको। ध्यान से अभी भी आप 2-3 दिन हो, अपने दिव्य नेत्रों से देखना, ये आपको एक जैसे लगेंगे। इनका जो मुस्कुराहट है ये भी आपको एक जैसा लगेगा। तो ये इस स्थान की खासियत है, यहां जो आता है रहता है उसके ऊपर वो कलेवर चढ़ जाता है। आप अभी दो दिन तीन दिन भी रहे आपके ऊपर थोड़ा तो चढ़ ही जाएगा यहां से जब जाओगे तब। इसीलिए देखो गायन है कि भाई वो सरोवर में डुबकी मार के निकले तो भाई परी बन गए। तो भूमि तो स्टैटिक है, ठीक है, मिट्टी दीवार, परंतु इन दीवारों में या इस जमीन में स्मृतियां जो भरी हुई है वो आज तक भी उतनी ताजी है, जिस वजह से यहां पांव रखते ही कुछ होने लगता है। जो ही उस मोड़ से आते हैं इस तरफ से या उस तरफ से तो ऑटोमेटिकली धड़कन जो है वो अलग होना शुरू हो जाती है। भले हमने देखा नहीं, किसी को, साकार बाबा को नहीं देखा, परंतु फिर भी समझ में आता है। आज भक्ति में भी लोग कितना करते हैं कि यहां से श्री राम गए थे, इधर सबरी ने बेर खिलाए थे, आज भी है। तो आज सोचो, ये तो साक्षात परमात्मा ने जिस रथ का आधार लिया वह पावरफुल आत्मा, सत्युग में पहला पहला जन्म लेने वाली जो आत्मा, उनके सारे क्रियाकल्प जो यहां चले, जो भी इनकी एक्ट चली यहां, तब जो लोग थे। इसलिए हिस्ट्री हॉल में जरूर जाओ बैठो, क्योंकि हम में से कई है जिन्होंने पुनर्जन्म लिया है। तो हिस्ट्री हॉल में जरूर बैठो और अपना कोशिश करो स्मृतियों को इमर्ज करने का, कि क्या मैं थी या था। हो सकता है आपको कुछ स्मृतियां आ जाए, क्योंकि हम लोग सब ज्यादा अभी कलर वाले जमाने में आए हैं, परंतु ब्लैक एंड व्हाइट में जाना जरूरी है तो बरोबर दिखता है सब क्या था क्या है। तो इसीलिए फिर भी मैं तो थैंक्स कहूंगा हमारी दीदी माँ को, हमारी शकु दीदी को, जो बहुत मेहनत करके मुझे बता रही थी कि भाई इतने लोग कैंसल हो गए, इतने लोग ये हो गए, उनका भाग्य। पर जो आ रहे हैं उनका पदम 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 गुणा भाग्य, उसके लिए बहुत हो सकता है सामान्य बात होगी, तीन छह दिन में भूल भी जाओगे, परंतु आज एक एक दो दो साल वेटिंग पीरियड है। कितने सारे बहने डेट्स मांग रहे, हमारा ग्रुप लाना है, हमारा ग्रुप लाना है। तो यहां आना, यहां रहना, यहां खाना पीना बैठना, यही अपने आप में एक भाग्य है। बाकी तो हरेक का अपना अनुभव है। तो मैंने इसीलिए विशेष ये रिक्वेस्ट किया था कि जब मेरा क्लास नहीं रखो, मैंने कहा क्योंकि हमने तो इतना अनुभव नहीं किया जितना इन्होंने दोनों ने किया है। तो मैं मनी मन सोच रहा था कि ये ऐसा बड़ा ये सुखद संजोग है संगम युग का कि आपके समक्ष तीन पीढ़ी बैठी है, और ये ऐसी पीढ़ी है जिनका आपस में खून से भी ज्यादा गहरा रिश्ता है। अमूमन आज के समय में जिनका खून का रिश्ता है वो तो साथ में रहते ही नहीं है, ना बच्चा बाप के साथ रहता है, पोते पोती तो बिल्कुल नहीं रहते हैं। परंतु आज ये ऐसा सुखद संजोग है कि इन्होंने इनको जन्म दिया, उसके पश्चात हमें भी जन्म दिया, परंतु तीनों ने अपना अपना एक दौर देखा हुआ है। जो इन्होंने साकार का एक जो दौर देखा है वो बिल्कुल अलग दौर था। उसके कुछ एंड में उन्होंने देखा वो दौर, थोड़ा सा मैं कहूंगा 15-20%। और मैंने तो कुछ ब्लैक एंड व्हाइट देखा ही नहीं है, परंतु मैं ये बड़े गर्व से कहता हूं कि मुझको बहनों ने बड़ा किया है मेरे को। हालांकि हमारे लौकिक माँ बाप हाजिर है या इनके पास 13-14 वर्ष की आयु तक रहा, परंतु मूल परवरिश जो है तो बहनों ने मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। और दादियों का असीम प्यार, दादियों की मैं कहूंगा असीम कृपा रही है, ये कहना मैं समझता हूं अतिरिक्त नहीं होगा, बहुत प्यार और दादियों की कृपा दृष्टि रही है। तो उसके चलते मैं समझता हूं इन लोगों के माध्यम से मैंने बहुत सारी ऐसी अनुभूतियां की, चाहे दादियों से, त्रिमूर्ति दादियां, सभी दादियों से। मैं समझता हूं कि होंगे बहुत सारे, परंतु शायद मैं ऐसा मेरे समय की, मेरे जनरेशन में ऐसा मैं इकलौता हूं जिसने ऑलमोस्ट सभी पुरानी दादियों को राखी बांधा है। ऐसा मैंने बहुत कम सुना है। सभी दादियां अमूमन जो भी यहाँ रक्षाबंधन पे हमारे वरिष्ठ भाई जो होते हैं, वो जो स्टेज पे दादियां, विशेष जो वरिष्ठ दादियां, उनको राखी बांधते थे सोने की। परंतु मैंने जितनी भी दादियां भारत में रही है उन सभी को मैंने राखी बांधा है अपने हाथ से। तो ये भी एक परम सौभाग्य जैसे है भगवान ने दिया। तो मैंने इसीलिए कहा था कि ऐसा कुछ रखो जो हम तीनों का, जो ये तीन दौर है, कल आज और कल के, तो वो आप सभी को उसमें से आप कुछ अपनी बुद्धि और विवेक अनुसार, जितना आप अपनी जिज्ञासा से जानना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ आप पूछिए और बात करिए। ये मैंने कहा था, अभी ये बताया गया आगे चेतना में।
ओम शांति। आप सभी को भाई जी ने आइडिया दिया ही है कि हम यहाँ पे परिवार बैठे हैं। ऐसे बहुत रेयर इंस्टेंस होता है कि घाटकों पर सब जोन के सभी सेवा केंद्र से एक एक जन यहाँ पे उपस्थित है ना, ये खुशी की बात। और सबसे खुशी की बात ये कि तीनों हमारे वरिष्ठ, आदरणीय दीदी माँ, आदरणीय शकु दीदी, आदरणीय निकुंज भाई जी हमारे बीच उपस्थित है। तो अपने भाग्य के लिए हम सबसे पहले जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि जितनी महिमा हम मधुबन की सुनते हैं उतनी ही महिमा हमारे घाटकों पर सेवा केंद्र की है। क्योंकि बाप दादा का घाटकों पर सेवा केंद्र को वरदान है कि हर बार वो कुछ नवीनता करेगा, कुछ यूनिक करेगा और एक एग्जाम्पल बन के रहेगा, एक सैंपल बन के रहेगा। तो हमें कितना ना गर्व है हमारी प्यारी प्यारी दीदी माँ पर, जिनको स्वयं ईश्वर बाबा ने चित्र में बिठाया। आप सभी ने देखा है ना, कुछ नए नए हैं बाबा के बच्चे। तो जो भाई जी कह रहे ब्लैक एंड व्हाइट जमाना, वहां पर दीदी माँ ने, दीदी माँ को बाबा ने सर्वव्यापी किया, अपनी माँ को सर्वव्यापी किया। तो कितना ये गर्व की बात है, कितना खुशी की बात है ऐसे हमारी प्यारी दीदी माँ, जिनका बाबा मुरली में भी गायन करते हैं कि दहेज में जिनको सेवा केंद्र खोल करके दिया, ये भी एक एग्जाम्पल रहा है पूरे यज्ञ में। जोरदार तालियां। और हर बार हर प्रसंग का नवीनता भरा कुछ दीदी माँ लेकर के आते हैं, जो आप अवश्य, जो आप मधुबन निवासियों से भी सुनेंगे तो हमेशा दीदी माँ के लिए कितना हाई रिगार्ड, रिस्पेक्ट है उनका, वो अवश्य आपको सुनने मिलेगा। तो आज हमारे बीच ये तीनों उपस्थित है, जो जैसे कहते हैं ना घर में बहू, फिर होती है सास और फिर दादी सास बोलते हैं। ऐसे मैं एक जनरल एग्जाम्पल दे रही हूं आपको। तो ऐसे ये तीन जनरेशन हमारे क्या कहूं मैं, बहू किसे कहूं, भाई जी आप बहू, आप शकु दीदी जी, आप सास और दादी सास, ऐसे आप तीनों का हम मेल देख रहे हैं एंड अवश्य तीनों की अपनी क्या कहे विचार होंगे, स्वभाव संस्कार होंगे, लेकिन कभी भी हमने आपको ऐसे दो मत होते नहीं देखा, तीनों के एक मत ही देखा है। तो दीदी माँ, आपसे शुरुआत करते हैं, आप सबसे बड़े हैं, आप जो ये जनरेशन गैप अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो दोनों में से, तो सबसे पहले थोड़ा सा आपसे हम सुनना चाहेंगे कि तब का जमाना, तब का दौर कैसा रहा और अभी, क्योंकि मॉडर्न फैमिली में भी अभी आप देखेंगे कोई भी जॉइंट फैमिली रहना नहीं चाहते। रहना चाहते हैं क्या जॉइंट फैमिली में? किसको सुनना है सासू माँ का, किसको सुनना है जेठ जी का, देवर जी का, कोई नहीं रहना चाहता है, लेकिन सबको न्यूक्लियर रहना है। पर हम देख रहे हैं एक ही परिवार के तीन ऐसे दिग्गज जो अपने अपने पोस्ट पे है फिर भी साथ होके चल रहे हैं। तो सबसे पहले दीदी माँ से सुनेंगे।
जनरेशन साथ साथ रहती है तो उसमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है, और कुछ करने की भी दिल होती है तो उनके सहारे कर भी सकते हैं, और कई हमारे अपने अरमान होते हैं जो ओल्ड जनरेशन है, तो न्यू जनरेशन के द्वारा वो इच्छाएं जब पूरी होते देखते हैं तो बहुत ही अंदर में गर्व होता है, गौरव होता है, और जैसे आत्मा तृप्त होती है कि जो हमने चाहा हम नहीं कर पाए, परंतु ऐसा नहीं है, हमारी जनरेशन वो कर रही है, तो उनका नाम और भी ऊंचा उठता जा रहा है, इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। जब शकु दीदी आई तो उसने पूरी ही जिम्मेवारी जब से आई तब से लेकर के, एक घर के अंदर बड़ी बेटी होती है ना, वो माँ की जगह पर होती है, तो एक माँ बन करके उसने पूरा साथ मन वचन कर्म और सेवा में हमें पूरा दिया। यहाँ तक कि कभी कभी माँ के पास कोई परीक्षा आती है, समस्या आती है, कोई उलझन आती है, तो बड़ी बेटी क्या करती है, माँ को शांत करती है, समझाती है, बताती है, उनको उसका महत्व भी बताती है, और खुद उसके आगे रहती है कि हर परिस्थिति पहले मेरे पे गुजरेगी, बाद में आपके तरफ आएगी। कहते हैं ना ऐसे कि अगर कोई ने आपका कुछ भी किया तो उसको पहले मेरे से गुजरना होगा, तो ये मिसाल रही उसकी। तो कैसे नहीं इस जनरेशन को मैं प्यार करूं। फिर आगे ये हमारी न्यू जनरेशन जो बिल्कुल ही, हम दोनों से बिल्कुल निराली, हम तो बाबा का सुनते थे, सोचते थे और फिर करते थे, इन्होंने फिर हमको फॉलो करना शुरू किया। पर अब ये जो न्यू जनरेशन है वो मुझे कुछ बाप समान डायरेक्ट दिखती है, कि बाबा जैसे सोचता था और करता था, उसमें टाइम नहीं लगाते थे, हम लोगों ने टाइम लगाया, इन्होंने भी टाइम लगाया, लेकिन ये जनरेशन जो मैंने इनके अंदर देखा प्रैक्टिकल, वो जो सोचते हैं ना तुरंत प्रैक्टिकल में लाते हैं। घाटकोपर के भी यहाँ कुछ भाई बैठे होंगे जिन्हों को ये अनुभव होगा, राजीव भाई आप तो बहुत संघ में सेवा करते हो, नितिन भाई आप भी बहुत अंग संग रहते हो, तो मैंने देखा कि इनको सोच आई ना, मैं बाबा की एक बात बताऊंगी तो टाइम जाएगा, आपको आज इनको सुनना है, तो इनको अगर सेवा का कोई प्लान आया तो मुझे हमेशा ऐसा ही लगा है कि ये कोई न्यू जनरेशन की, इस युग की, इस अंतिम जन्म की आत्मा नहीं, परंतु अंतिम जन्म में भी एडवांस पार्टी है। क्योंकि ये कमाल वही कर सकते हैं कि सोचे और तुरंत अमल में आए, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन से इनकी एक्शन चलती है जो भी है। मैंने जो मेरे जीवन में अनुभव किया वो मैं बताती हूँ। इसीलिए हर एक जनरेशन को हमें एक्सेप्ट करना है, रिस्पेक्ट देना है, रिगार्ड देना है। पता नहीं किस घड़ी कौन सी महान आत्मा हमारे पास बाबा भेज देवे और हम बाबा को वो रिस्पेक्ट रिगार्ड देना और बाबा की भेजी हुई वो सौगात को हम न्यायोचित व्यवहार करने में चूक जाएं, ये मेरे दिल में हमेशा रहता है।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी माँ, बहुत सुंदर रीति से आपने ये जवाब दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आदरणीय भाई जी को, क्योंकि भाई जी सबसे छोटे हैं, जैसे उन्होंने कहा सभी बहनों से पालना लिया हुआ है आपने, तो भाई जी आपने कभी ये प्रेशर फील किया है कि मेरे बड़ों को मुझसे कितना क्या कहे एक्सपेक्टेशंस है यज्ञ के प्रति, सेवा के प्रति, तो वो प्रेशर कभी आपने फील किया या आपको प्यार ही प्यार मिला है? आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। कभी आपको ऐसे लगा कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, दादी सास और सासू माँ प्रेशर करती है, ऐसे कभी आपको फील हुआ है?
एक्चुअली हम लोगों में और ये बहू जैसा इसका पार्ट है, ये ज्यादा टिमिड है। मतलब मैं तो लकी हूं, मुझे आज तक ऐसा कोई प्रेशर का अनुभव नहीं हुआ है। हालांकि लोगों को ये मानने में, विशेष करके ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो हमारे सरेंडर जो भाई है, उनको ये काफी अचरज लगता है कि इतना बहनों की संस्था है तो इतनी बहनों की संस्था में इतना आगे कोई कैसे जल्दी इतना कम समय में आगे आ सकता है। पर मैं इसका श्रेय दीदी माँ को ही दूंगा, क्योंकि मैं अनुभव में भी सुनाता हूँ कि इन्होंने मुझे कभी कोई बात कहकर सिखाई नहीं है। जो मैं अभी भी हम लोग बैठे तभी सोच रहा था मैं कि साकार बाबा ने भी थियोरेटिकल ज्ञान बहुत कम दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बरोबर ना? बाबा ने
कर्म करके सिखलाया,
सबकॉन्शियसली आपको पता ना चले ऐसे सिखा दिया। जिसको समझना था उन्होंने समझ भी लिया, क्योंकि उस समय में जो भी थे तो वो इशारे से ही समझ जाते थे, ज्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ता था। तो मेरे किस्से में ऐसा ही हुआ, मतलब मुझे बोलकर मेरे को ऐसा याद नहीं आ रहा कुछ सिखाया गया। और मैं तो काबिल दाद देता हूं कि इन्होंने मेरे जैसे को बड़ा किया, कि डिफिकल्ट चाइल्ड टू ब्रिंग अप, पर उन्होंने चैलेंज उठाया और करके उन्होंने सिखाया, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा, बट कहा नहीं, तो उसमें मेरे लिए इजी हो गया, क्योंकि पढ़ाई करते करते ही आया। और उसके पश्चात तो, क्योंकि ये दोनों पहले से सेटल थी इनके साथ, तो वो भी डिफिकल्ट है एक न्यू एंट्रेंट को सेट होना, तो वो भी मैं कहूंगा मोर और लेस स्मूथ ही रहा है मेरे लिए। फर्स्ट टाइम जब मैंने मेरा, एक तो ज्ञान में आने के बाद मेरा, मैं 2 साल के बाद इनको मिला हूं ज्ञान में आने के पश्चात, तो इसीलिए मैं तो पहले ऐसा ही समझता था कि भाई जो प्रमिला बहन है वही दीदी है, मुझे ऐसा मन में था। उन्होंने कहा नहीं, बड़ी दीदी अलग है, तो मुझे फोटो दिखाया कि ये है। पर टूर ज्यादा रहा करती थी तो इसीलिए कभी मेरा मिलना हुआ नहीं, और स्कूल में पढ़ता था पर एक बार मुझे बताया कि भाई इनका जो संभाल करती है सेक्रेटरी इनकी, तो फर्स्ट तो मैंने विष्णु बहन से ही मिला, इनसे आप टाइम लो। तो फिर शुरुआत में तो यही परिचय, लंदन वाली हर्षा बहन का भांजा है जो हमारी मासी लंदन में, जिन्होंने ज्ञान मिलाने के लिए निमित्त बना है। फर्स्ट टाइम विष्णु बहन के थ्रू मिलना हुआ। शक्कू दीदी को बहुत पीछे से मिलना मेरा हुआ है, तो इसीलिए दोनों ने, मैं कहूंगा कि दीदी जी ने दोनों को अच्छा कन्विंस किया कि मुझे स्वीकार करके, वो दोनों ने बड़ा दिल रखा, वरना ऐसे है दोनों टफ। शक्कू दीदी ज्यादा, विष्णु में थोड़ी कम स्ट्रिक्ट है, बट टफ मतलब थोड़ी स्ट्रिक्ट है, और बाकी भी मतलब ऐसे यंग बच्चा है, परंतु इसमें 100 out of 100 तो इन्हीं को जाता है, क्योंकि माँ जो होती है वो सबकी, हर बच्चे की वीकनेस जानती है, तो उसको मालूम रहता है कहाँ पे किसकी वीक बात है, तो किसको कहाँ एडजस्ट करने का। तो इसीलिए वो उन्होंने इतना साल से अच्छा एडजस्ट किया, आज भी कर रही है फॉर्चुनेटली, क्योंकि अब जैसे हमको यहाँ ऊपर आना है तो एक की इच्छा है कि ये ऊपर रहे, मना तीन में से एक की इच्छा है, किसकी है मैं नहीं कहता हूं, परंतु किसी एक की इच्छा है कि इनको रहना चाहिए ऊपर, अभी इतना अच्छा मौसम है, सब तैयारी कर दिया, अभी एक की इच्छा है कि नहीं इतना मौसम जो है ये है तो भाई क्यों रिस्क लेने का, एक जो है वो न्यूट्रल है कि भाई इनको जो ठीक लगे तीन में से। तब तीनों को ये जिज्ञासा रहती है, ये क्या डिसीजन लेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी। अब हम 13 तारीख आए हैं यहां, मतलब 2 दिन पूर्व, तो वहां से निकलने से लेकर तीनों सोच रहे थे भी क्या करेगी, वहां रहेगी कि ऊपर चलेगी क्या नीचे रहेगी। तो मैंने देखा कि ये बराबर हम लोगों को खिलाती है गेम में, कभी इसको इधर, कभी इसका रख देते, कभी इसका रख देते, बट मतलब न्यूट्रल स्पीकिंग ये दोनों भी अग्री करेगी। एट द एंड ऑफ द डे मैं, मेरे को ही ज्यादा मतलब लाड प्यार मिलता है, ऐसा मेरे को लगता है, आई डोंट नो, मेरे से हाँ, और मुझे भी कई बार लगता है कि नहीं ये लोग दोनों ज्यादा एबल है, परंतु ये इनकी विशाल हृदयता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोगों के बीच में आज तक कभी भी अस्तित्व का प्रश्न नहीं आया है, जो इस संस्था में उसमें भी सार्वजनिक जीवन में जब आप हो उसमें बहुत बहुत डिफिकल्ट है। आप सार्वजनिक जीवन में हैं और उसमें एक ही परिवार के कुछ लोग एक ही पॉपुलैरिटी के लेवल पे आते हैं, तो उसमें न चाहते भी कई बार बहुत सारी बातें निर्मित होती है, परंतु मैं इन्हीं को श्रेय दूंगा कि हम तीनों में संस्कार ऐसे डाले हैं जो हम लोगों ने अपना अस्तित्व ऑलवेज ऑलवेज इनके समक्ष गौण किया है, पहले ये बाद में हम सब। अन्यथा ऐसी बहुत बार परिस्थिति आई है जब उनको भी मुझे भी, हमको अनेक प्रकार से विविध प्रकार से अवसर मिले हैं, जो किसी को भी हमारी जगह पे कोई अवसर ऐसे मिलेंगे तो अवसर छोड़ेगा नहीं इस। किसी को कहा जाए कि आप मधुबन में ही परमानेंट रह जाओ तो ये तो वंस इन ए लाइफ टाइम गोल्डन चांस है, परंतु हमने कभी भी ये चीज को अपने दिमाग के आर पार जाने नहीं दिया। हम जहां के हैं वहीं ठीक है, जिसने हमको पैदा किया अपने को उसके साथ ही रहने का है, उतना भी आगे नहीं जाना है। तो ये हमारे अंदर संस्कार आए, तो इसीलिए सास बड़ी सास बहु होते हुए भी हम लोग प्रेम प्यार से रहते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, क्योंकि आपने अभी बताया उस रिलेशन में। एक और एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी छोटा सा, क्या आपको ऐसे कभी नहीं लगा कि मुझे अंडर में चलना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो यूथ हम देख रहे हैं उनको फ्रीडम चाहिए, किसी के बंधन में वो नहीं आना चाहते हैं. तो आपके लिए व्हाट वाज योर टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ कि आपने सोचा नहीं अब यही बाबा है, यही मेरी दीदी है और मेरे को इनके साथ ही मतलब चलना है. ऐसे कभी आपको वो टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ उसके बारे में बताएं.
96 में जब भी मैंने 1996 में हम डोंबिवली गए तभी इनका कार्यक्रम था वो पूरा मैंने अपने सिर माथे उठाया था. डायमंड जुबली ब्रह्मा कुमारी की उसमें प्रकाशमणि दादी को हमने निमंत्रण दिया था. तब मुझे संकल्प आया कि नहीं मेरे को सरेंडर होना है और माता पिता से बात करके मैं समझता हूं जुलाई 96 में मैंने अपना पहला सरेंडर का फॉर्म भरा था और मुझे डोंबिवली में ही रहना था, घाटकोपर में नहीं रहना था मुझे. तो जो डोंबिवली वाले हैं वो उनको सुनना चाहिए अच्छे से क्योंकि वहां पे मुझे संकल्प बहुत था कि MIDC वगैरह जो है वहां पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स वगैरह वगैरह जो वहां बहुत सारे गाड़ा केमिकल्स और अन्य कंपनियां थी. तो 96 में मुझे ऐसा लगा 96 इज ए टर्निंग पॉइंट और 96 में बहुत कुछ हुआ हमारे सामने, बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां भी आई, धर्म संकट भी आए, परंतु हम लोगों ने फेस किया एक साथ. कोई और होता था शायद नहीं करता था, छट जाते थे, टूट जाता था, परंतु मैं समझता हूं कि ये साकार बाबा ने जिस संकल्प से घाटकोपर की स्थापना की कि घर परिवार और आश्रम एक साथ चले, उस थॉट प्रोसेस को लेते हुए जिस प्रकार से सेंटर चला, वहां का जो माहौल, वहां की जो निमित्त दीदी, उस वजह से वो आज तक वो पारिवारिक ही सिस्टम जैसे चल रही है. टिपिकल ब्रह्मा कुमारी सेंटर जैसा वातावरण आज भी नहीं है, कल भी नहीं था. उस वजह से जो हमारे पारिवारिक मूल्य है वो काफी मजबूत रहे. रही बात अंडर चलने की, मुझे कभी, मैं शुरू से लेकर आप तो कभी अंडर चला और ही मैं अभी अंडर चल रहा हूं. इतना मुझे 35 साल हो गए हैं अभी, मैं मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि मेरे को बहुतों के अंडर चलना पड़ रहा है. जो मेरे साथ है अनेक लोग उनके अंडर मैं चलता हूं, मैं उनकी सुनता हूं. शुरू में आया तभी अंडर कभी चला नहीं है, परंतु ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अंडर क्या, अंडर चलना उसकी भी अपनी एक परिभाषा है. मैं समझता हूं अंडर चलना ये योग्य शब्द न हो करके हम कहते हैं कि भाई यू हैव टू बी ए गुड लिसनर. तो आज सुनता हूं अनेकों की, कई हमारे से भी यंग है, उनकी बातें सुनता हूं, उनकी बातें सुन के समझता हूं कहां मुझे ये सुनीला चेतना ही है, मैनेज करती है मुझे, कई बातें वो लोग ही बताती है मुझे, चाहे नितिन भाई है या वैशाली जयश्री है, कई बातें वो लोग बताते हैं मैं सुनता हूं. तो जिसको हम कहते हैं जो दीदी जी ने कहा उनका जो स्वभाव है कि रिसीविंग एकोमोडेटिंग, वो थोड़ा अब पिछले योग भवन बनने के बाद काफी हुआ है. अंडर यहां कोई किसी के चलते नहीं है अमूमन, आप यदि साथ में हो या नहीं हो, ऐसा मैं समझता हूं.
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, क्योंकि हम सभी परिवार ही बैठे हैं ना, तो ज्ञान वाले क्वेश्चंस नहीं पूछ रही हूं, जो हम प्रैक्टिकल जीवन में फेस करते हैं हम सभी अपने जीवन में, तो वो ही पूछ रही हूं. तो एक लास्ट क्वेश्चन है टाइम को देखते हुए शकु दीदी जी से. शकु दीदी जी, क्योंकि आप जैसे बीच में हैं, दीदी माँ है, फिर आप है, फिर भाई जी है, तो ऐसे कभी आपका जैसे स्लैंग लैंग्वेज में बोलूं तो सैंडविच हुआ है कि मुझे इनका भी सुनने का, छोटों का भी सुनने का, तो मैं पिस रही हूं, धर्म संकट में हूं, ऐसे कभी हुआ है आपके साथ?
बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हम सुन रहे. मैं भी बहुत बचपन से ही आई हूँ और आप सब जानते हैं कि जन्म भले मेरे को माँ ने दिया, लेकिन 8 वर्ष की आ गई तो पालना मुझे दीदी ने दिया, इसलिए दीदी ने ही बड़ा किया। तो दीदी के साथ साथ बातें तो जीवन के अंदर उतराव चढ़ाव की शुरुआत से ही आई है, लेकिन दीदी का इतना सपोर्ट और प्यार और शक्ति रही, मदद रही, और उनकी जो हैंडलिंग थी, ट्रेनिंग रही है, उन्होंने मुझे हर परिस्थिति को पार करना सिखाया। तो इसीलिए मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मैं आगे बढ़ती गई और आज मैं 55 बरस से बाबा के घर में रह के आपके सामने हूँ। लेकिन इतना मेरे जीवन के अंदर मुझे ये गर्व है कि दीदी ने मुझे बचपन में समर्पित किया और बाबा ने मुझे स्वीकार किया। मुझे दादियों ने एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत छोटी थी इस कारण से। तो बाबा को कुछ करवाना था मेरे से, और जो दादियों ने बेगरी पार्ट देखा उसका 10% बाबा ने मुझे अनुभव कराया। मैं जब देहरादून मसूरी वगैरह रही तो ऐसे कई वही सिस्टम्स थी संस्था के अंदर जो मुझे वो बेगरी पार्ट में चलना हुआ, तो उसकी मुझे ये खुशी है और एक अंदर अनुभव है कि मैं सतयुग की जो राजधानी है और बाबा की जो बन रही है नई दुनिया, और दादियां दीदियां जो आज एडवांस पार्टी में गई हैं, मैं उनके बहुत समीप की आत्मा हूँ, ये मुझे अवश्य फील होता है, और उसका श्रेय बाबा के बाद दीदी को जाता है। और जब से लेकर के भाई जी हमारे कनेक्शन में आए हैं, तभी भी बातें तो बहुत हमारे सामने आई, विशेष तो डोंबिवली में वो दीदी के साथ आए थे तो वहाँ भी बहुत परीक्षाएं आई, लेकिन उनका भी दीदी माँ के साथ मुझे बहुत सपोर्ट मिला। भले उनकी उम्र छोटी थी पर बुद्धि, शार्प बुद्धि बहुत है, और बाबा ने उनको ऐसे वरदान दिया हुआ है, तो उनके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ती गई दोनों के। और आज भी जब देख रहे हैं कि कैसे चारों तरफ दीदी माँ और भाई जी सेवाओं के प्लान करते हैं, चाहे फिर अंदर रहने वाली बहनों को आगे बढ़ा रहे, भाई बहनों को आगे बढ़ा रहे, वीआईपीओं की सेवा हो रही है, हर क्षेत्र में दोनों की मुझे बहुत बहुत मदद मिल रही है, और बाबा तो ऊपर है ही है, तो इसीलिए मैं बिल्कुल सैंडविच नहीं हूँ।
बहुत धन्यवाद शकुनी जी, बताना चाहूंगी
जी।
देखो सैंडविच तो सबको अच्छी लगती है, लगती है ना? और सैंडविच इसलिए भी नहीं हुई वो कि दो ब्रेड के बीच में इसको रहना है, तो एक तरफ रिस्पेक्ट और रिगार्ड फुल इनको यहाँ से सिक्योरिटी के रूप में मिलता रहता है, और हमारी तरफ से उनको फुल प्यार छत्र छाया के रूप में उनको सिक्योर करता रहता है। तो दोनों तरफ से वो नरम है, इनको कहाँ पर भी आंच नहीं आने देते हैं, क्योंकि जो लाडला होता है ना उसको भी बहुत संभाला जाता है। मैं थोड़ा लव में ज्यादा, ये लव और लॉ तो लॉ में ज्यादा, तो इसीलिए बैलेंस मेरा लव उसका लॉ, पर ये बीच में आ गया, अब ये क्या होगा बताओ? लव और लॉ के बैलेंस में तो चले, परंतु बैलेंस भी राइट है या रॉन्ग है जजमेंट कौन देगा? ये अभी की जनरेशन, तो इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ कैसे करना क्या करना, जो बातें हमारे समय में नहीं थी वो सारी बातें अभी है, विज्ञान की बातें। तो हम मुरली में तो सुनते रहते थे कि ये विज्ञान जो है आखिर वो तो विनाश के लिए है, परंतु साथ साथ हमारी दुनिया के लिए ही बना है, नई दुनिया के लिए। तो कैसे वो विज्ञान काम में आएगा ये हमें तब समझ में नहीं आता था। हम तो इतना जानते एटॉमिक बम बनाया, ये मेगा बम बनाया, ये बम बनाया, विनाश होगा बस। लेकिन आज समझ में आ रहा है जब हम न्यू जनरेशन के साथ काम करते हैं और ये करते हैं तो समझ में आता है। बाबा कहते थे तुम्हारा ये सब वहां काम आएगा, तो हम सोचते थे वहां पर इंजीनियरिंग का क्या काम है, वहां विज्ञान का क्या काम है, परंतु वहां सब काम में आने वाला है। अब वो बातें करेंगे तो बहुत गहराई में जाना पड़े, तो ये इसीलिए बहुत बैलेंस है। फिर बीच में एक हमको एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए, तीनों को चाहिए ना, तो कोई छोटी सी गुड़िया भी चाहिए जरूर, ये हमारा एंटरटेनमेंट।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी माँ का। दीदी माँ आपने सैंडविच का आध्यात्मिक रहस्य बताया, जब भी खाएंगे तो आप तीनों याद आएंगे हमें अभी, जब भी सैंडविच खाएंगे तो देखो ये कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। दीदी माँ ने हमको ये चांस दिया कि हम पांडव भवन भट्टी अटेंड कर सके, है ना, ये बड़ी बात, जोरदार तालियां। और ऐसे ही हमारे आदरणीय भाई जी, आदरणीय शकु दीदी जी, जो इतने व्यस्त होने के बावजूद इतना सब कुछ मैनेज करते हुए परिवार के बीच हमारे पहुंचे हैं, यू नो, वो मोमेंट्स क्रिएट करने, मेमोरीज क्रिएट करने, इसके लिए फिर एक बार जोरदार तालियां।
और आप सभी क्या हैं?
हाँ, आप
दीदी माँ, आपने मसाला बहुत चाहिए ना, सलाद चाहिए, टॉनिक
जी, जी,
चाहिए,
तो हम सभी
चाहिए, मक्खन चाहिए
जी, तो सैंडविच के जो पदार्थ है, इंग्रेडिएंट्स है, वो हम सभी
चीज चाहिए, वो आप सभी मेरे हो।
तो आप सभी संकल्प करना, फिर बाबा शायद पूरा भी कर सकते हैं, सैंडविच मिल सकता है। आप सभी स्ट्रांग संकल्प करें। ओके, तो जी जी जी, तो हम सभी अभी हमारे वरिष्ठों से दृष्टि लेते हुए ये सेशन को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। और एक सूचना है, जिन्होंने भी साइट सीइंग के लिए नाम लिखाया है, रजिस्टर किया है, कृपया करके आप भोजन करके जल्दी से 2 बजे तक ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस में पहुंचें।